अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद के छह अलग अलग प्रश्नात्मक छह प्रकरण हैं, पांच प्रश्नात्मक पांच प्रकरणों का विचार हो चुका है, षष्ठ प्रश्नात्मक षष्ठ प्रकरण का विचार करना है। इन छह प्रश्न कहो या प्रकरण कहो रूप प्रश्न उपनिषद को माना गया मुंडक उपनिषद का व्याख्यान। मुंडक उपनिषद प्रश्न उपनिषद का व्याख्या है, इसलिए मुंडक उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित तो पराविद्या तथा अपराविद्या रूप अर्थ का विस्तार से वर्णन प्रश्न उपनिषद को माना जाएगा। तो प्रश्न उपनिषद के छह प्रश्नों में से तीन प्रश्न अपराविद्या का ससाधन और सफल वर्णन करने में सार्थक हो जाते हैं, उनका उपयोग है। अपराविद्या का साधन और अपराविद्या का अधिकारी, अपराविद्या का फल, वो सब तीन प्रश्नों के तथा उनके उत्तर के माध्यम से प्रश्नोपनिषद में तीन प्रकरणों में बताया गया। चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ प्रकरण रूप जो तीन प्रश्न आ रहे हैं और उनका उत्तर आ रहा है, ये है मुंडक उपनिषद में बताई गई पराविद्या का ससाधन सफल वर्णन करने के लिए तीन अवांतर प्रकरण। उसमें से चतुर्थ प्रकरण में बताई गई पराविद्या और पराविद्या का साधन के रूप में एक बताया गया ओंकार की उपासना पंचम प्रकरण में, और षष्ठ प्रश्न है एक प्रकार से पराविद्या के फल का वर्णन करने वाला। पराविद्या का फल वर्णन प्रधानतया षष्ठ प्रश्न रूपी प्रकरण में होगा, उसके लिए पराविद्या का जो स्वरूप चतुर्थ प्रश्न में कहा गया था चतुर्थ प्रकरण में, उसका अनुवाद होगा साधन का फल बताने के लिए। चतुर्थ प्रश्न रूप जो प्रकरण है चौथा, उसमें अवांतर अलग अलग पांच प्रश्न आचार्य पिपलाद जी के प्रति किए गए गार्ग्य के द्वारा, सौर्यायन गार्ग्य नाम के छह ऋषि में से एक ऋषि हैं, और उन्होंने चौथे प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी के पास अपने पांच प्रश्न उनकी अनुमति से किए। वे पांच प्रश्न में से जो पंचम प्रश्न है उसका उत्तर पराविद्या का स्वरूप है, पराविद्या का वर्णन है पंचम प्रश्न में अवांतर पांच प्रश्न में से। पहला प्रश्न तो वहां पर है कि कानी अस्मिन् पुरुषे स्वपन्ति, ये जो कार्यकरण संघात रूप पुरुष है, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी ये सूक्ष्म शरीर कहो या सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रिया कहो, अंतःकरण ये सब करण कहलाता है, सूक्ष्म शरीर, और कार्य कहलाता है स्थूल शरीर, और इनका संघात यानी समूह। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समूह में से कौन है जो सो जाते हैं, सुपंती, ये पहला प्रश्न है। और अर्थात पहले प्रश्न से पूछा गया कि किसके व्यापारोपरत होने पर मनुष्य को दूसरे लोग सो रहा है ऐसा कहते हैं। तो जिसके व्यापार से उपरत होने से सोपिति ये नाम आएगा, वो हो जाएगा जागृत अवस्था का धर्मी। और जागृत अवस्था उसका धर्म माना जाएगा। और वो कौन है? वो इसी कार्यक्रम संघात अंतःपाती है। और कार्यक्रम संघात आत्मा नहीं है, अनात्मा है। और कार्यक्रम संघात में से ही किसी विशेष का धर्म जो होगा जागृत अवस्था, तो माना जाएगा कि आत्मा की जागृत अवस्था नहीं है। जो एक अभिमान करता है कि मैं जग रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की नहीं है अपितु अनात्मा का धर्म है, ये निश्चित होगा। तो उससे आत्मा का पृथक्करण हो जाएगा। जागृत आदि अवस्थाएं जिसकी हैं, उन अवस्थियों से अवस्था रहित जो आत्मा है वो अलग है, ये निश्चित हो जाएगा ना। इसके लिए पहले प्रश्न से पूछा गया एक प्रकार से जागृत अवस्था किसका धर्म है, दूसरे से पूछा गया कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में इस शरीर की रक्षा कौन करता है, तीसरे से पूछा गया स्वप्न का अनुभविता कौन है, अर्थात स्वप्न अवस्था किसका धर्म है, शरीर की रक्षा करना भी आत्मा का धर्म नहीं है, नहीं तो वो तो एक प्रकार से बॉडीगार्ड बन जाएगा, तो सब व्यापारी हो जाएगा है? तो शरीर की रक्षा करना भी आत्मा का धर्म नहीं है। पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा गया कि जागृत अवस्था किसका धर्म है, बाह्य इंद्रियों का। बाह्य इंद्रिया जो चक्षुरादि हैं, वे जागृत अवस्था कालीन रूपादि विषयों का ग्रहण करती हैं, तो माना जाता है जग रहा है। इंद्रिय विषोपलब्धिर जागरणम, ये जागृत अवस्था का लक्षण ही है। इंद्रियों से व्यावहारिक पदार्थों की उपलब्धि, ये जागृत कहलाती है। तो बाह्य इंद्रियों का धर्म है, बाह्य इंद्रिया सब व्यापार होगी तो माना जाएगा जग रहा है। बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के मन में एकीभूत हो जाती है, और मन मात्र जो अंतकरण कहलाता है सब व्यापार रहता है, उद्भूत वासना से युक्त होकर के स्वप्न के दृश्य दर्शन तथा दृष्टारूप त्रिपुटी के रूप में प्रकट होता है। तो उस समय वो स्वप्न का अनुभविता बन जाता है मन ही, यानी मन रूप उपाधि के रहते हुए मन उपाधिक चैतन्य तेजस कहलाता है स्वप्न अनुभविता। तो जिस उपाधि के रहने से, सव्यापार रहने से, जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था या सुषुप्ति अवस्थाएं रहेगी माना जाएगा, वह तत्तद उपाधि की अवस्थाएं हैं। हाँ, तो उपाधि के साथ अभिमान करने से उपाधि के कार्य को मान लेता है अपना कार्य, अपनी अवस्था। अवस्था है बाह्य इंद्रियों की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था का धर्मी है मन, और जब मन भी शांत हो जाता है, अपने व्यापार से उपरत हो जाता है, निर्व्यापार स्थिति में पहुंचता है, उस समय अंतकरण में कोई भी विशेष विशेष वृत्ति नहीं होती, विशेष ज्ञान नहीं होता, और विशेष ज्ञान रहित जो अंतकरण की सामान्य अवस्था है, वो अंतकरण विशेष सब व्यापार अंतकरण कारण उपाधि अविद्या में आश्रित हुआ अपना व्यापार छोड़ करके, तो उस समय कहा जाता है सुषुप्ति। सुषुप्ति का लक्षण है कि बाह्य जागृत अवस्था कालीन स्थूल पदार्थों का भी ज्ञान नहीं है, और अभ्यंतर जो वासनामय पदार्थ स्वप्न में प्रतीत होते हैं उनका भी ज्ञान नहीं है। ऐसी जो अवस्था, वह अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। और वो सुषुप्ति अवस्था किसका धर्म होगा, ये चौथा प्रश्न पूछा गया कि कस्य एतत् सुखं भवति, यानी अर्थात सुषुप्ति अवस्था किसका धर्म है। तो वो बताया गया सुषुप्ति अवस्था को अज्ञान का धर्म, अज्ञान उपाधि को चैतन्य उस समय रहता है प्राज्ञ। इसलिए अज्ञान यदि न हो, अविद्या यदि न हो, तो सुषुप्ति भी नहीं कहलाएगी। तो सुषुप्ति में एक उपाधि रहती है अज्ञान, कोई भी कार्यात्मक उपाधि नहीं रहती, कारण उपाधि रहती है, और उस कारण उपाधि के अधीन सारे कार्य उपाधि सूक्ष्म शरीर अंतःपाती बाह्य इंद्रिया तथा अंतकरण हो जाते हैं अज्ञान के अधीन। अहंकार भी, ये जो अहंकार कहलाता है कार्यकरण संघात में अहम अभिमान, वो है अहंकार। तो उस समय वो अहंकार भी नहीं रहता, इसलिए ये भान नहीं रहेगा कि मैं मनुष्य हूं या मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मुंबई में सो रहा हूं, ये सब देश काल वस्तु का भान नहीं रहता। अहंकार है कार्यकरण संघात विषयक अहम अभिमान। वो शरीर की रक्षा करना प्राण का धर्म है। तीनों अवस्थाओं में जो सव्यापार रहेगा, अंतकरण कहने से अंतकरण चतुष्टय को लेना, और अंतकरण चतुष्टय में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गए, उस समय चारों भी निर्व्यापार स्थिति में है, और सब व्यापार जो होगा वो तीनों अवस्था में शरीर का रक्षक माना जाएगा। तो जागृत में भी प्राणों का व्यापार होता रहता है, स्वप्न में भी होता है, सुषुप्ति में भी होता है। इसलिए तीनों अवस्था में जो सब व्यापार है उसे कहा जाएगा रक्षक, और तीनों अवस्था में सब व्यापार प्राण होता है। वो एक बार इस शरीर में, शरीर गर्भस्थ होता है, माता के गर्भ में स्थित होता है, तब से लेकर के व्यापार उसका प्रारंभ होता है और उसका व्यापार शांत होता है तो फिर शरीर को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है अग्नि के अधीन करने के लिए, जब प्राण का व्यापार शांत होता है। तो इसलिए प्राण को माना गया तीनों अवस्था में रक्षक शरीर का, और जागृत अवस्था मानी गई बाह्य इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म माना गया स्वप्न अवस्था को, और सुसुप्ति को माना गया अविद्या का धर्म। इन उपाधिक होने के कारण ये उपाधियां प्रधान है उन अवस्थाओं में, इसलिए उन उपाधि का ही धर्म माना जाएगा इन अवस्थाओं को। और आत्मा न तो शरीर का रक्षक है, न तो जागता है, जागृत अवस्था वाला है, न स्वप्न अवस्था वाला है, न सुसुप्ति अवस्था वाला है, इन सब का साक्षी है। तो पंचम प्रश्न सौर्यायनी गार्गी का है कि ये सब किसमें विलीन होते हैं, कस्मिन् संप्रतिष्ठितानि भवन्ति, का मतलब ये किसमें सारे कार्यक्रम संघात स्थित हो जाते हैं। तो माना जाता है ये कार्यक्रम संघात यानी स्थूल कार्य, सूक्ष्म कार्य, और इसको उपलक्षण समझना अविद्या का भी। ये सारी की सारी अविद्या की तो बीच में कल्पना है कारण की, क्योंकि निर्विशेष जो ब्रह्म है उसे कहा गया कि अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, का मतलब वह विदित यानी कार्य भी नहीं है, और अविदित का अर्थ होता है कार्य है। कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित निर्विशेष है कौन? वो निर्विशेष ब्रह्म, वो कारण भी नहीं है, और उसको दिखाने के लिए उसका ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होने से ही ये कार्य कारणात्मक प्रपंच बाधित होता है। उस निर्विशेष का ज्ञान कराने के लिए हमारे अनुभव में आने वाला जो कार्य वर्ग, कार्यात्मक संसार, और हमारे मोक्ष का साधनभूत ज्ञान जिसका है निर्विशेष ब्रह्म का, इन दोनों का आपस में वस्तुतः कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म कारण नहीं है, और जगत का फिर कोई न कोई बीच में कारण स्वीकार करना पड़ेगा जिसके कारण ब्रह्म में कारणता आ जाए। इसलिए अविद्या रूप कारण की कल्पना की जाती है कि अविद्या अव्याकृत माया ये बीच में कार्य रूप संसार तथा निर्विशेष परमात्मा के बीच में है, वो दोनों का अविद्यक संबंध जोड़ने वाला। अपर ब्रह्म नहीं, अव्याकृत कहा जाता है कारण उपाधि को, अपर ब्रह्म तो कहते हैं कार्य उपाधि को, वो है सूत्रात्मा कहो हिरण्यगर्भ कहो उसे, और ये है कारण ब्रह्म कहलाता है कारण उपाधि वाला। उसे गीता के 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष नाम से कहा गया, अविद्या को, अव्याकृत को, माया को अक्षर, और क्षर है कार्य, और निर्विशेष ब्रह्म है पुरुषोत्तम। तो वो पुरुषोत्तम और क्षर जो संसार, इनके बीच में एक अक्षर की कल्पना है, उसके बिना कार्य कारण भाव बन नहीं सकता, संसार की उपपत्ति नहीं हो सकती। तो वो जो अव्याकृत है वही अविद्या है, वही माया नाम से कही जाती है, प्रकृति नाम से कही जाती है वेदांत में, अव्यक्त नाम से कहा जाता है। और ये सारा कार्य सुषुप्ति के समय कहां पर जाता है, तो कहा वो परे अक्षरे सर्व एकी भवन्ति, ऐसा आता है। तत्सर्वम परे अक्षरे संप्रतिष्ठते, ऐसा आता है कि तत्सर्वम शब्द से लिया जाता है कि सारा संसार वो पर अक्षर में, पर अक्षर है परमात्मा, वो परमात्मा में स्थित होता है। वो सुषुप्ति के समय ही इसलिए बताया, यद्यपि परमात्मा को बताना चाहिए कारण उपाधि से भी रहित तो अवस्था जहां है पूरी अवस्था वहां पर, लेकिन समझाना किसको है, समझाना है अज्ञानी को, और अज्ञानी के लिए जहां समझना सरल होगा वहां श्रुति समझाने का प्रयास करती है। तो सामान्य जो जिज्ञासु है उसकी सहसा तुरीय अवस्था तो नहीं बनती ना, वो तो खूब निधिध्यासन करते करते परिपक्व अवस्था निधिध्यासन की हो जाए तब जाकर के तुरीय अवस्था में पहुंचेगा, नहीं तो साधक अवस्था में तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीन अवस्थाएं ही साधक की रहती है। और तीन अवस्था में से जागृत अवस्था में यदि समझाया जाएगा तो जागृत अवस्था में तो तीन उपाधियां रहती हैं, स्वप्न में दो उपाधियां रहती हैं और सुसुप्ति में मात्र एक उपाधि है। और सुसुप्ति को जागृत अवस्था में स्मरण करके याद करके जगते हुए सुसुप्ति में पहुंच जाए तो उस समय जागृत में भी स्थूल और सूक्ष्म कार्य उपाधि से क्या हो जाएगा, बुद्धि का व्यावर्तन होगा, बुद्धि हट जाएगी वहां से, और जो कारण उपाधि है वो विद्यमान रहेगी। तो उस एक उपाधि कारण उपाधि से उस आत्मा का विवेचन करना संभव होगा। इस दृष्टि से उपनिषद है उस कारण उपाधि को जिस अवस्था में ग्रहण करता है जीव, उस अवस्था में समझाने की चेष्टा उपनिषदे करती है निर्विशेष ब्रह्म को, और ये बताती है कि ये सारा संसार परमात्मा में ही स्थित है। अब सुषुप्ति के समय परमात्मा में स्थित हुआ तो प्रलय माना जाता है चार प्रकार का, एक नित्य प्रलय है, एक नैमित्तिक प्रलय है, एक महाप्रलय है, एक आत्यंतिक प्रलय माना जाता है। तो नित्य प्रलय कहा जाता है सुषुप्ति को, जहां पर स्थूल कार्य और सूक्ष्म कार्य की प्रतीति न हो, द्वैत की प्रतीति न हो, तो कुछ समय के लिए रोज होता है सुषुप्ति अवस्था में द्वैत मात्र का विलय, और वो सुषुप्ति है नित्य प्रलय। तो नित्य प्रलय एक प्रकार से महाप्रलय की छोटी सी झांकी जैसी है, हाँ सैंपल है। तो महाप्रलय में क्या होगा, जब महाप्रलय होगा तो क्या होगा, कैसा होगा, उस समय बिना संसार के क्या स्थिति होगी, तो जैसे गहरी नींद में आपकी स्थिति होती है, ऐसी ही महाप्रलय के समय स्थिति रहेगी सबकी, वो दीर्घकालीन सुसुप्ति है महाप्रलय भी, ये समझना। और महाप्रलय के बाद फिर जगत उत्पन्न होता है, तो जैसे सुसुप्ति के समय क्या हुआ कि जगत ये कार्य वर्ग सारा का सारा विलीन हो गया कारण उपाधि ब्रह्म में, और जब जग जाते हैं या स्वप्न में पहुंचते हैं तो स्वप्न प्रपंच या जागृत प्रपंच कहां से निष्पन्न होता है, जहां विलीन हुआ था वहीं से सारा प्रकट होता है। ऐसे महाप्रलय में भी जहां वर्तमान कल्प का विलय होगा और वर्तमान सृष्टि का विलय होने के बाद भावी कल्प निर्माण होगा, सृष्टि होगी, तो वहीं से वो निकलेगी, तो माना जाएगा कि महाप्रलय में भी ये सारा संसार द्वैतात्मक न रहने पर भी एक तत्व रहता है। जैसे सुसुप्ति के समय जागृत स्वप्न प्रपंच का अभाव होने पर भी सोने वाला कभी सुसुप्ति के समय मैं नहीं था ऐसा अनुभव नहीं करता, उसको ये अनुभव तो होता है कि जागृत ये सारा प्रपंच भी अनुभव में नहीं आ रहा था उस समय, स्वप्न प्रपंच भी अनुभव में नहीं आ रहा था, स्थूल सूक्ष्म द्वैत नहीं था लेकिन मैं था। ऐसे महाप्रलय में भी मैं रहूंगा, वो महाप्रलय में रहने वाला जो मैं वही परमात्मा है, कारण उपाधि, समष्टि कारण उपाधि परमेश्वर, उसी में ये सारा कार्य वर्ग स्थित होता है, विलीन होता है और सृष्टि के समय उसी से निष्पन्न होता है। इतना जानने से मात्र मोक्ष नहीं होता, जानना होगा वो कारण दो प्रकार का होता है, एक परिणामी उपादान कारण और एक विवर्त उपादान कारण। तो परिणामी उपादान कारण जो अविद्या है, अव्याकृत कहो, अविद्या कहो, अक्षर कहो या माया कहो, इसका तो परिणाम है ये जगत, और माया भी, माया शब्द का अर्थ ही निकलता है, मां का अर्थ होता है निषेध, या का अर्थ होता है जो, तो मां यानी नहीं है, या यानी जो, उसे कहते हैं माया, जो नहीं है लेकिन दिखती है वो है माया। तो न होते हुए प्रतीयमान जो पदार्थ वे माइक कहलाते हैं, तो संसार की अपनी वास्तविक सत्ता नहीं है लेकिन संसार प्रतीत हो रहा है इसलिए माइक है, और उनका कारणभूत माया भी परिणामी उपादान कारण ऐसी है, उसकी अपनी सत्ता है नहीं लेकिन सच्ची प्रतीत होती है, तो जो न होते हुए प्रतीत हो उसे कहा जाता है माया, उसे कहा जाता है मिथ्या, और जो है भी नहीं और दिखता भी नहीं उसे कहा जाता है असत, अत्यंत असत। माया में और संसार में, माया संसार ये दोनों मिथ्या है, अत्यंत असत नहीं है, और मनुष्य के सिंह ये असत है, मनुष्य के सिंह है भी नहीं और दिखते भी नहीं है। ऐसे संसार नहीं दिखता है ऐसा नहीं, नहीं है इतनी तो समानता है लेकिन नहीं दिखता है ये वैपरीत्य है, मिथ्या में और अत्यंत असत में ये इतना अंतर होता है। न होता हुआ दिखे वो मिथ्या, और जो हो भी न और दिखे भी न वह असत, अत्यंत असत, और जो है भी और अज्ञान वशात भ्रांति वशात ज्ञात नहीं होता लेकिन प्रमा में प्रतीत होता है, उसे कहा जाता है सत। यथार्थ अनुभव में जो प्रतीत होता है वो सत। तो परमात्मा का प्रमा यानी यथार्थ अनुभव होता है इसलिए वो सत है, और सारा वेदांत यही तो बता रहा है ब्रह्म सत्यम। जब यथार्थ बोध होगा शास्त्र से तो सत्यत्वेन रूपेण वही प्रतीत होगा, फिर सर्वम खल्विदम ब्रह्म वही वही भाषेगा, दूसरा नहीं रहेगा। और जगत वो मिथ्या है, वो भाषेगा तब भी मिथ्या भाषेगा। वो मृगतृष्णिका में जैसे मृगतृष्णिका की प्रतीति होती है मरीचिका में, ऐसा भाषेगा बाधित होकर के। और आकाश का पुष्प बिल्कुल है भी नहीं प्रतीत भी नहीं होगा। और जीव वो मिथ्या कोटि में है कि सत्य कोटि में है, ब्रह्म सत्य कोटि में चला गया, मिथ्या कोटि में जगत आ गया, आकाश पुष्पादि असत कोटि में चले गए, इन तीन कोटि में से मैं वो कहां है? तो मैं है सत कोटि में ब्रह्म सत्यम। इसलिए जीवो ब्रह्मैव शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव ब्रह्म रूप ही है, न अपर उससे भिन्न नहीं। तो सुसुप्ति के समय इसलिए ये कार्यात्मक प्रपंच न दिखने पर भी मैं की अनुभूति रहती है, वह मैं है, और उसी में संसार विलीन हुआ और जागृत में उसी से प्रकट होता है। तो ये परमात्मा में ही महाप्रलय में संसार विलीन होता है और सृष्टि के समय उससे ही प्रकट होता है, इसके लिए उदाहरण बन जाती है सुसुप्ति अवस्था। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सुसुप्ति यदि न होती तो मोक्ष का अद्वैत भाव समझना बड़ा कठिन हो जाता। अद्वैत को समझना, जागृत और स्वप्न दो ही अवस्था होती, सुसुप्ति न होती तो अद्वैत समझ में न आता, अद्वैत को समझना कठिन पड़ता है। और वो अद्वैत सुखरूप है इसको समझना भी बड़ा कठिन होता, और स्वप्न न होता तो जागृत के मिथ्यात्व को समझना बड़ा कठिन होता। इसलिए भगवान ने कृपा करके, नहीं तो खाली जागृत अवस्था ही देती होती एक जीव की तो खूब काम कर सकते थे ना, 24 घंटा चार पांच घंटे अपने नित्य क्रिया में भले ही चले गए, मिल जाते हैं 20-20 घंटा काम करने को, लेकिन बीच में स्वप्न भी दिया सुसुप्ति भी दी, उतना तो समय ऐसे ही चला जाता है। ऐसे ऐसा नहीं जाता, जागृत के मिथ्यात्व को समझने में बड़ी सरलता स्वप्न के द्वारा होती है, और अद्वैत को समझने के लिए सुसुप्ति अद्वैत आनंद रूप है और अद्वैत भी होता है ये समझने में सुसुप्ति की सहायता होती है, ये दृष्टांत है। तो अब वो जो परमात्मा है वह उस परमात्मा का ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, जो विवर्त उपादान कारण है। माया तो परिणामी उपादान कारण हुई, वो जिससे न होते हुए भी प्रतीत हो रही है, जिससे सत्ता तथा स्फूर्ति प्राप्त कर रही है, प्रकृति कहो माया कहो अव्याकृत कहो, वह परमात्मा है जगत का विवर्त उपादान कारण। विवर्त उपादान कारण का ही दूसरा नाम है अधिष्ठान। और अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव ये माना जाता है मोक्ष का साधन। जगत के विवर्त उपादान कारण का आत्मरूप से बोध हो जाए, अनुभव हो जाए तो मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति मिलती है। इसलिए ब्रह्म विद्या क्या है, पराविद्या क्या है, मुंडक उपनिषद में बताई गई। जगत का जो विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो, परमात्मा ब्रह्म, उसका मैं के रूप में करामलकवत अनुभव। करामलक कहा जाता है हाथ में रखा हुआ आंवला, आमलक कहते हैं आंवले को, और करामलक यानी कर कहते हैं हाथ को, तो हाथ में रखा हुआ आंवला, उसके विषय में जैसे संशय और भ्रांति नहीं होती, संशय भ्रांति रहित यथार्थ अनुभव जिसके हाथ में आंवला रखा हुआ है उसे आंवला विषयक होता है। ऐसे ही जगत के विवर्त उपादान कारण का मैं के रूप में संशय और भ्रांति रहित तो अनुभव हो जाए, तो वह अनुभव क्या करता है, जो ये अव्याकृत है जगत का परिणामी उपादान कारण उसको बाधित कर देता है। तो कारण बाधित हुआ तो उसका परिणाम, परिणामी कारण का बाध होने से परिणाम भी बाधित हो जाता है, और यही मुक्ति है। तब तक ये मिथ्या है ये समझ में नहीं आएगा जगत, मिथ्यात्व का जगत के अनुभव होगा। किसके दृष्टि में मिथ्या है, वो परमात्म बोध होने पर ये जगत मिथ्या है, उससे पहले तक तो सत्य ही प्रतीत होगा जब तक बाधित नहीं होगा। अधिष्ठान ज्ञान से ही अध्यस्त का बाध होता है, जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ये सर्प कल्पित है मिथ्या है ये निश्चय नहीं होगा। सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए बहुत आवश्यक होगा रस्सी का अनुभव होना। हाँ, ऐसे द्वैत मात्र कार्य कारणात्मक प्रपंच बाधित है मिथ्या है, इसके मिथ्यात्व के लिए आवश्यक है पहले आपको बोध हो जाए कि जगत का अधिष्ठान मैं हूं। इस ज्ञान से ही कार्य कारणात्मक प्रपंच का बाध होगा। उस ज्ञान को, जगत का अधिष्ठान मैं हूं, इस ज्ञान को कहा गया मुंडक उपनिषद में पराविद्या, और उस पराविद्या का स्वरूप सौर्यायनी गार्ग्य ने जो चतुर्थ प्रकरण में प्रश्न उपनिषद के पांच प्रश्न किए उनमें से पंचम प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी ने बताया कि ये जगत अधिष्ठान मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं, यह पराविद्या है। अब वो जगत अधिष्ठान को जो जिसमें सारा जगत सुसुप्ति के समय विलीन हुआ करके बताया, महाप्रलय में विलीन होता है, वह पुरुष वो कहां रहता है, ये जिज्ञासा होती है, यानी उसका अनुवाद किया जा रहा है, वो कहीं अपने स्वरूप में ही रहता है, लेकिन उसका स्थान बताना है कि वो, हाँ, कहां स्थान बताने से तो फिर देश से परिचिन्न हो जाएगा, का मतलब उसका मय के रूप में अनुभव का अनुवाद करना है, उस जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति को दिखाने के लिए। इसलिए षष्ठ प्रश्न के प्रारंभ में जो सुकेशा भारद्वाज नाम के ऋषि हैं, सुकेशा उनका नाम है, भरद्वाज के कुल में उत्पन्न होने से उन्हें भारद्वाज कहते हैं, भरद्वाज उनका गोत्र है। तो सुकेशा नाम के ऋषि छह ऋषि में से एक है, वे आचार्य पिपलाद जी के पास अपना प्रश्न रखते हैं। अपना प्रश्न रखने से पहले एक भूमिका करते हैं, मैं ये स्वयं भी एक गुरुकुल के संचालक है। ये सब छह ऋषि अपना अपना गुरुकुल चलाते थे, इनके अपने अपने आश्रम थे, लेकिन परब्रह्म का बोध प्राप्त करने के लिए अपने अपने आश्रमों से निवृत्त होकर के कुछ समय के लिए आचार्य पिपला जी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बन करके आए हैं। तो एक बार इनके पास आने के पहले की घटना सुकेशा सुना रहे हैं पिपलाद जी को कि मैं अपने आश्रम में जब रह रहा था तो मेरे पास कौशल देश का राजपुत्र आया जिज्ञासु बन करके। पहले राजा लोग भी जिज्ञासु बन करके ऋषियों के पास विद्या लेने के लिए जाते थे। कुछ विद्याएं राजाओं के पास भी हुआ करती थी, तो राजा के पास भी ऋषि जाते थे और विद्या लेते थे, परस्पर विद्या का लेन देन होता था। तो कौशल देश का राजपुत्र हिरण्यनाभ, उनका नाम है, सुकेशा ऋषि के आश्रम में आकर के सुकेशा ऋषि को प्रणाम किया और उनको प्रसन्न चित्त देख करके प्रश्न किया। वो प्रश्न बताते हैं राजपुत्र ने जो किया था सुकेशा ऋषि को, कि षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, ये प्रश्न है कि आचार्य पिपलाद जी को सुकेशा कह रहे हैं कि मेरे पास आकर के हिरण्यनाभ ने कहा कि हे भारद्वाज जी, क्या आप षोडशकल पुरुष को जानते हो? तो इसमें, इस प्रश्न में दो शब्द, यानी एक पुरुष शब्द है और एक उसका विशेषण है षोडशकल। व्यर्थ शब्द का अर्थ है जानते हो क्या। तो ये पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णत्वात् पुरुषः, परमात्मा, और उनका एक विशेषण है षोडशकल। षोडशकल शब्द का अर्थ होता है सोलह कलाओं वाला, और कला शब्द का अर्थ है अवयव के तरह अवयव। तो सोलह अवयव वाले पुरुष को आप जानते हो क्या? सोलह कलाएं बताई जाएगी, अभी आएगी, प्राण आदि सोलह कलाएं हैं, और इन सोलह कलाओं को आप जानते हो क्या? सोलह कला वाले पुरुष को जानते हो क्या, ये प्रश्न किया। हिरण्यनाभ को उस षोडशकल पुरुष का ज्ञान नहीं था और सब साधनों में श्रेष्ठ साधन माना गया है सत्य को, इसलिए शिक्षावल्ली में तैतृय उपनिषद का एक अध्याय है, उसका नाम है शिक्षावल्ली। तीन अध्याय है उसमें, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। तो शिक्षावल्ली में आचार्य के पास 12 वर्ष तक रह करके विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और समावर्तन संस्कार के समय 12 वर्ष तक जो सिखाया गया उसका सार समझाते हैं। जब आचार्य जा रहा है अब गुरुकुल छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में, तो जीवन भर याद रखें ऐसा कुछ उपदेश उसके हित का करते थे। उसमें सबसे पहले आता है सत्यम वद धर्मंचर, सत्य बोलो, तो जब सुके शाह अपने गुरुकुल में रहते थे और 12 वर्ष के बाद समावर्तन संस्कार के समय आचार्य ने उनको उपदेश किया था, वो उनको याद है और वैसा ही आचरण करते हैं सत्यम वद। तो यदि किसी विषय का जिज्ञासु बनकर के कोई आ जाए और सामने वाला इस विषय का ज्ञाता होगा ये समझ करके आया है, अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, लेकिन जिसके सामने प्रकट की है वह यदि जानकार है उस विषय का तो उसे जरूर बताना चाहिए, ये भी नियम है। विद्वान को अपने पास विधिवत आए हुए जिज्ञासु को उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए जिज्ञास्य अर्थ को जरूर बताना चाहिए, ये वेद बताता है। लेकिन यदि ज्ञान नहीं है और आया है तो अपने अज्ञान को ढक करके कुछ भी बता दे, ऐसा करना भी गलत है। सत्यम वद इस वाक्य का, विधि वाक्य का अतिक्रमण है, और विधि वाक्य का अतिक्रमण करने से माना जाता है, लगता है प्रत्यवाय नाम का दोष, और वह प्रत्यवाय नाम का दोष अधर्म क्या करता है, धर्म को समाप्त कर देता है। इसलिए सुकेशा जानते नहीं है षोड़शकल पुरुष को, तो षोड़शकल पुरुष विषयक अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं और हिरण्यनाभ को बता देते हैं कि जिसको तुम जानना चाहते हो उस षोड़शकल पुरुष को मैं नहीं जानता हूं, बता दिया उन्होंने कि तम अहम कुमारम अब्रुवम नाहम इमम वेद, मैं तुम जिसको जानना चाहते हो उसे नहीं जानता हूं, इसलिए तुम्हें इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए षोड़शकल पुरुष का जो कोई ज्ञाता होगा उसके पास जाना चाहिए, मैं तो नहीं जानता। तो सुकेशा ऋषि ने तो सत्य बता दिया, लेकिन हिरण्यनाभ को लगा कि ये तो जानकार है लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते हैं, उनके इस बात पर सत्य वचन पर विश्वास नहीं हुआ उनका, हिरण्यनाभ का। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि देखो तुम विधिवत मेरे पास आए हो और मेरी अनुमति से मुझे प्रश्न किए हो, और यदि मैं जानता षोड़शकल पुरुष को तो तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य में जैसे गुण होने चाहिए ऐसे गुणवान को जरूर बताता, तुम्हारे में गुण देख रहा हूं लेकिन नहीं जानता हूं इसलिए बता नहीं सकता। ये कहने पर भी ये नहीं लगा कि इतने बड़े ऋषि इतना बड़ा गुरुकुल चलाते हैं और षोड़शकल पुरुष को नहीं जानते होंगे, ये विश्वास नहीं हुआ। तो फिर ये कहते हैं कि उसके चेहरे के भावों को देख करके राजपुत्र के मेरे बात पर विश्वास नहीं हुआ, उसे विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये कहा कि दो प्रकार के लोक होते हैं, उन्हें उत्कृष्ट 84 लाख प्रकार की योनि में मनुष्य योनि को माना गया मध्यम, और उससे उत्कृष्ट देवादि योनि। तो मध्यम योनि मनुष्य लोक, इसे इह लोक कहा जाता है, और परलोक कहा जाता है देवादि योनि को। तो ये इहलोक और परलोक दोनों से भी वंचित रहता है वह व्यक्ति जो मिथ्या भाषण करता है, ये मुझे ज्ञान है शास्त्र का। और यदि मैं जानता होता षोड़शकल पुरुष को और तब भी ये कहता कि नहीं जानता हूं तो ये मिथ्या भाषण हुआ ना, और इस मिथ्याभाषण के करने से होगा क्या, तो मिथ्याभाषी माना जाता है अधर्म, और अधर्म क्या करता है, धर्म का विनाश करता है। दोनों में विरोध है ना, देवासुर के तरह। तो देव प्रबल होते हैं तो असुरों को दबाते हैं, असुर प्रबल होते हैं तो देवताओं को दबाते हैं। ऐसे अधर्म प्रबल होता है तो धर्म नष्ट होता है, और धर्म नष्ट होगा तो धर्म का ही फल है मनुष्य शरीर प्राप्त होना या देवता का शरीर प्राप्त होना। और इन दोनों शरीरों की प्राप्ति उस व्यक्ति को नहीं हो सकती जो जानकार होकर के भी अपने आप को मैं नहीं जानता हूं ऐसा कहता है, का मतलब झूठ बोलता है, तो अधर्म कर रहा है। तो ये जानता हूं मैं तब भी ये कह रहा हूं का अर्थ है कि यथार्थ भाषण ही कर रहा हूं, षोड़शकल पुरुष विषयक मुझे वास्तविक रूप से ही ज्ञान नहीं है। तो ये वाक्य सुनने के बाद हिरण्यनाभ को लगा कि सही कह रहे हैं ये। हिरण्यनाभ अपने जिस रथ से आए थे उस रथ में बैठ करके चले गए, लेकिन सुकेशा को वो षोड़शकल पुरुष विषयक जो प्रश्न है ना, और उस प्रश्न का उत्तर देने आया नहीं, अर्थात षोड़शकल पुरुष विषयक ज्ञान नहीं था। तो वो जिसका ज्ञान नहीं है वह माना जाता है विज्ञेय, तो विज्ञेय के रूप में षोड़शकल पुरुष इनके हृदय में बैठ गया कि इसको जानना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और ये जब भी कभी अकेले में बैठते तो कांटे के तरह चुभ जाता ये अज्ञान उनके हृदय में। इसीलिए उस षोड़शकल पुरुष के जिज्ञासु बनकर के आचार्य पिपलाद जी के पास आए थे। तो ये कह रहे हैं कि वो हिरण्यनाभ तो चला गया लेकिन मेरे हृदय में वह षोड़शकल पुरुष विज्ञेय बनकर के कांटे के तरह चुभ रहा है, उसे आप मुझे बता करके उसका ज्ञान करा करके एक प्रकार से वो कांटा मेरे हृदय से निकाल दीजिए। षोड़शकल पुरुष का अज्ञान ये कांटा है, और उसका उपदेश करेंगे ज्ञान होगा तो अज्ञान रूपी कांटा निकल जाएगा तो यथार्थ बोध होगा। ये प्रश्न सुकेशा ने रखा आचार्य पिपला जी के पास। प्रथम कंडिका जो छठवें प्रकरण की है उसमें यही सब विचार आया कि वो कहां है पुरुष, क्वासो पुरुष, वो षोड़शकल पुरुष कहां है बताइए, उसको कहां खोजने के लिए मैं जाऊं। तो बताएंगे कि जहां है वो वहां है, इसका उत्तर आगे आएगा द्वितीय कंडिका में, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।